जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वन जारी, जमुना तीर वन जारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन, जमुना तीर वन जारी, जमुना तीर वन जारी, जमुना तीर वन जारी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललित विशाख जय राधेश ललित विशाख जय राधेश ललित विशाख जय गौरनिताय जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय पतित पावन जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की पतित पावन गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की इदाय गौर प्रेमानंदे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद नवम अध्याय मोहिनी मूर्ति के रूप में श्री भगवान का अवतार श्लोक संख्या 20 एवं 21। तो दो श्लोक है, 20वां श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, मैं अकेले पढ़ता हूँ, इसके बाद फिर 21 को ठीक है, 21 को सभी एक साथ में उच्चारण करेंगे। कल्पयित्वा पृथक पंक्ति रूप नो, मैं पढ़ता हूं दूसरा, 21वां सभी एक साथ में पढ़ेंगे। कल्पयित्वा पृथक पंक्ति रूप येषं जगत्पति तांश्च तांश्च उपवेशयामास स्वेषु स्वेषु स पंक्तिषु। अनुवाद, मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देवताओं तथा असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी और उनके पद के अनुसार उन्हें बैठा दिया। तो एक इसमा हम सब एक साथ में पाठ करेंगे। दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन उपसंचरैः दूरस्थान पाययामास जरा मृत्युहरं सुधां। दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन उपसंचरैः दूरस्थान पाययामास जरा मृत्युहरं सुधां। दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन उपसंचरैः दूरस्थान पाययामास जरा मृत्युहरं सुधां। दैत्यान गृहीत कलशो पंचयन उपसंचरैः दूरस्थान पाययामास जरा मृत्युहरं सुधां। दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन उपसंचरैः दूरस्थान पाययामास जरा मृत्युहरं सुधां। दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन उपसंचरैः दूरस्थान पाययामास जरा मृत्युहरं सुधां। दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन उपसंचरैः दूरस्थान पाययामास जरा मृत्युहरं सुधां। शब्दार्थ, दैत्यान असुरों को गृहीत कलश अमृत का घट पकड़े श्री भगवान ने वंचयन ठगते हुए उपसंचरैः मीठे वचनों से दूरस्थान देवता जो दूर बैठे थे पाययाम मासम पिलाया जरा मृत्युहरम असक्तता बुढ़ापा तथा मृत्यु को हरने वाले सुधाम ऐसे अमृत को। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए वह सर्वप्रथम असुरों के निकट आई और उसने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया और इस तरह उनके अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया। तब उसने दूरी पर बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया, जिससे वे अशक्तता, बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो सके। तात्पर्य, मोहिनी मूर्ति श्री भगवान ने देवताओं को दूर बैठाया, तब वह असुरों के पास पहुंची और उनसे अत्यधिक लालित्यपूर्ण भाव से बोली, जिससे वे अपने आप को उससे बात कर पाने के कारण अत्यंत भाग्यशाली समझने लगे, क्योंकि मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को दूरस्थ स्थान पर बैठाया था। अतएव असुर ने सोचा कि देवताओं को नाम मात्र का अमृत प्राप्त होगा और मोहिनी मूर्ति हम पर इतनी प्रसन्न है कि सारा अमृत हमें ही पिला देंगी। वंचयन उपसंचरे ही शब्द सूचित करते हैं कि श्री भगवान की सारी नीति असुरों को मधुर शब्द बोलकर ठगने की थी। श्री भगवान की इच्छा एकमात्र देवताओं को अमृत बांटने की थी। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधकांद नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो। महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दैत्यान् गृहीत कलशो वञ्चयन् उपसञ्चरैः दूरस्थान् पाययामास जरा मृत्युहरां सुधां। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए वह सर्वप्रथम असुरों के निकट आई और उसने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया और इस तरह उनके अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया। तब उसने दूर पर बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया, जिससे वे असक्तता, बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो सकें। तो सुंदर प्रकरण, भगवान किस प्रकार मोहिनी मूर्ति धारण किए और क्यों किए, क्या उनका पीछे तात्पर्य, क्या रहस्य है भगवान ने इस प्रकार मोहिनी मूर्ति धारण किए। संसार में सभी हम जानते हैं कि सबसे सौंदर्यमयी स्त्री भगवान विष्णु के वक्षस्थल निवासिनी लक्ष्मी जी, सौंदर्य में परिपूर्ण। लेकिन जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी निवास करती है, वो श्रीनिवास जब वो एक स्त्री का रूप धारण करती है करते हैं, तो उनका स्वरूप कैसे सुंदर हो सकते हैं आप कल्पना कीजिए। तो उसी रूप धारण किए भगवान ने। क्यों धारण किए तो उसका चर्चा चल रही है। तो जैसे कि समुद्र मंथन करते समय सर्वप्रथम जो कि जहर निकला, जहर, इसके पश्चात क्या क्या बहुत सारे चीज निकले हैं, कल्प वृक्ष और वैदुर्य मणि जो कौस्तुभ मणि रूप में भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर है वो भी है, और बहुत सारे निकले। तो लक्ष्मी जी आई, इसके पश्चात एक दिव्य पुरुष भगवान का विष्णु के अवतार, एक सुंदर पुरुष हस्त में अमृत कलश लिए हुए, तो मंथन का अंतिम समय पर उन्होंने प्रकट हुए, और जिनका नाम भागवत में वर्णन है कि वे सर्व जो कि आयुर्वेद का प्रवर्तक धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध है। तो जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले, तो असुर और देवता उभय प्रयास किए थे, उभय दोनों समुद्र मंथन किए, लेकिन देखते ही असुर ने उस धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश को छीन लिया। ये है असुरों का स्वभाव होता है, जब छीन लिया तो देवता और क्या कर सकें, तो ये कमजोर है, असुरों को बलवान होते हैं। तो अंततगत्वा देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के शरण में गए, तो भगवान बोले कि तुम जाओ, हम इसका व्यवस्था कर रहे हैं, तो अब जाओ, अभी मैं उनका असुरों में अभी फूट डालकर वो अमृत को तुम लोगों ही पिलाऊंगा और उनको उससे वंचित कर दूंगा। तो ऐसे ही किए, जब असुरों के हाथ पर वो अमृत कलश आ गया, तो असुर ने, असुरों में भी बलवान भी है कमजोर भी है, जो बलवान थे उन्होंने सब छीना छपटी करने लगे आपस में, और जो कमजोर थे उन्होंने शिकायत करने लगे हमको नहीं मिल रहा है, ये सब छीना छपट करके वो सब पीने लगे हैं, पीने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो जब उन्होंने इस प्रकार शिकायत की, तो उनमें से कोई एक असुर वे कहते हैं देखो भाई, हम जो अमृत कलश को हम उनसे धन्वंतरी से हम छीन कर लाए, तो उसमें देवताओं के भी भाग है, उन्होंने भी प्रयास किए हमारे साथ, उन्होंने भी मंथन किया समान रूप से, एक तरफ हम दूसरे तरफ हुए, तो सभी हम प्रयास किए, उनको भी उनका भाग होना चाहिए। तो इतने में से ही तो भगवान विष्णु ने मोहिनी मूर्ति धारण करके दिव्य सुंदर माने कल्पनातीत ऐसे सौंदर्यवती स्त्री संसार में और हो नहीं सकती। तो इस प्रकार रूप धारण करके उनका दिव्य कटाक्ष से असुरों के ऊपर उनका निरीक्षण किए, ईक्षण किए। देवताओं ने सोचा कि ये तो बहुत सुंदर है, हमार तरफ वो देख रही है, जरूर ये अविवाहित स्त्री होगी, तो ये अपना पुरुष के अन्वेषण में वो आई है, तो हमारे तरफ देख रहे ही, देवताओं की तरफ तो वो तो देखते ही नहीं, तो मतलब हमको ये पसंद करती है। तो उन्हें पूछा कि देवी आप कहां से आई है, किसकी पुत्री है? तो मोहिनी ने उनको बड़ा सुंदर भाव से, मधुर मिष्ट वचन से, तो उनको इतना सुंदर उत्तर दिया जिससे कि असुर ने सोचा कि जैसे कि ये हमारे लिए आए, हमको ही ये वरमाला अर्पण और वर रूप में हमको ही स्वीकार करने आई है। तो सभी अपना जो कलह कर रहे थे तो कलह बंद करके अभी देखे अमृत को भूल गए। असुरों का यही स्वभाव होता है क्योंकि नया नया चीज उनको पसंद है, तो आज इतना है तो फिर और भी और कुछ हमको चाहिए, तो इस प्रकार अमृत भूल गए, अभी मोहिन का रूप पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए। तो जब उनसे पूछे वो बोले कि मैं बताती हूँ मेरी जो ठिकाना है, मैं क्या कौन हूँ, मैं एक अबला स्त्री हूँ। अब आप जानते हैं स्त्रियों का बारे में कैसे वो छलना करती है, तो आप मुझे पूछे तो मैं ऐसे ही स्त्री हूं जिसको संसार में कोई नहीं विश्वास करते हैं, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए स्त्री सिद्धहस्त है। इस प्रकार भगवान ने, मोहिनी ने उनसे कहा, पर उनका सौंदर्य में इतने मुग्ध हो गए थे देवताओं ने, इन बातों को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उनको तो उनको भोग करने के लिए इच्छा से आपस में तो चुपचाप बैठे शांत भाव से अगर कुछ बोलेंगे, आपस में कलह करेंगे तो फिर ही अपनी निंदा होगी, फिर हो सके तो मोहिनी हमसे दूर चली जाएंगी, देवताओं के पास चली जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने अपना जो कलह रूप ये को संवरण कर लिया। तो इसके पश्चात बोले कि आप लोग देवता और असुर, मोहिनी, भगवान मोहिनी रूपी मोहिनी तो उनसे पूछ रही थी कि आप लोग को दोनों तो एक ही पिता के संतान है, कश्यप मुनि के संतान है, दोनों तो भाई भाई है, आपस में क्यों झगड़ा करते हैं? देवता और असुर ये दोनों है ना, अदिति अदिति के पुत्र है तो कश्यप मुनि के, तो आप क्यों झगड़ा करते हैं? ना झगड़ा इस बात की है कि हमने समुद्र मंथन किया है और उससे अमृत निकला है, तो अमृत बांटने में हम लोग उनसे छीन कर ले आए और उनका भाग से उनको वंचित कर दिया, अभी हम आपस में पीना चाहते हैं, लेकिन हमारे बीच में भी फूट पड़ गई। कैसे? ना जो बलवान है वो हमसे जबरदस्ती छीन कर ले जाते हैं और हमको नहीं देते हैं। तो एक काम करिए, अगर आप कृपा करेंगी तो आप ये अमृत कलश को आप ले लीजिए और लेकर आप हमें बांट दीजिए। तो जब इस प्रकार राक्षसों ने, असुरों ने बोला तो मोहिनी ने कहा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, अगर आपको कोई इतराज नहीं है तो मैं ये काम कर सकती हूँ। ना क्या? ना मैं जो भी करूंगी आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैं आपको किसको ज्यादा दूं, किसको कम दूं और किसको ना दूं, तो आप कुछ बोलेंगे नहीं, इससे अगर राजी है तो फिर मैं अमृत बांट सकती हूं। तो असुर ने तो उनका रूप से इतना मोहित हो गए थे, बोले कि आप कुछ भी करें लेकिन अमृत हमको बांट दीजिए, क्योंकि उनसे बात करके तो इतना मुग्ध हो गए थे असुर लोग मोहिनी रूप में, तो सोच रहे थे कि ये ही हमारे पास रहने चाहती है, तो कुछ भी हो अमृत को आप जैसे ही कैसे भी आप बांट दीजिए, पर आप ही बांटे तो ठीक है। तो जब उन्होंने बांटना शुरू किया तो पहले उनको बताए, तो ये कहते हैं कल्पयित्वा पृथक पंक्ति रूभे शाम जगतपति ही ತಾಂಶ್ಚ ಉಪವೇಶಯಾಮಾಸ ಸ್ವೇಷು ಶೇಷು ಸ್ವೇಷು ಶೇಷು ಚ ಪಂಕ್ತಿಷು. ಪುನನೆ ಅಮೃತ ಕೋ ಬಾಂಟನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಸುರಂಕೋ ಔರ್ ದೇವತಾಂಕೋ ಅಲಗ ಅಲಗ ಪಂಕ್ತಿ ಮೇ ಪೂರ್ವ ದಿಶಾಕ್ಕೆ ಔರ್ ಮುಖ ಕರ್ಕೆ ಆಪ್ ದೂರ್ ದೂರ್ ಆ ಬಟ್ ಜಾಯೆ. ಏಕ್ ಸೈಡ್ ಮೇ ಅಸುರ ಲೋಕ ಬೈಠ ಜಾಯೆ ಔರ್ ದೂಸರಿ ಸೈಡ್ ಮೇ ದೇವತಾ ಲೋಕ ಬೈಠ ಜಾಯೆ. तो इस प्रकार उनको कहकर उपवेशयामास उनको बैठाया. उनको इस प्रकार बैठाकर अमृत अभी बांटने शुरू किया. तो जब असुरों से असुरों के पास ही थे, अमृत से कलश पकड़ी हुई थी, तो जब असुरों से शुरू करना था तो प्रत्येक प्रत्येक असुरों को उन्होंने देखती है और अपना कटाक्ष से अपना सौंदर्य से मुग्ध कराती हुई आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे. और ये शर्त था कि हम जो भी करेंगे आप कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी करेंगे. तो देखते रहे. देखिए भगवान ने मोहिनी मोहन सम्मोहन एक विद्या है, भगवान यही इसी विद्या को अपनाया सम्मोहन विद्या. सम्मोहन विद्या का अर्थ यह होता है किसी भी वस्तु को आप सम्मोहन करके उनको जो जो वस्तु नहीं है उसको प्रमाणित कर देंगे. मान लीजिए आपका हाथ में एक लप लप लपटते हुए आग के एक अंगार को पकड़ा देंगे, आप बोलेंगे ये बहुत सुंदर और सुकमल एक गुलाब आपका हाथ में मैंने दे दिया, आप देखो. उसको ऐसे सम्मोहित कर देते हैं तो उसको ऐसे फूल जैसे ऐसे सुगंध जैसे गुलाब का खुशबू ऐसे महक आता है और शीतल सा अनुभव होता है. उसको पता नहीं चलता है कि हाथ जल रहा है, हथेली में पड़ा हुआ जो अंगार वो हाथ को जला रहे हैं, फफोला आ गए हैं, उसको पता नहीं चलता है. ये है सम्मोहन विद्या, सम्मोहन विद्या. तो मोहिनी ने उनको इस प्रकार रूप से मोहित कर दिया, सम्मोहित कर दिया, तो उनका बुद्धि विवेक सब जाता रहा और उनको इस प्रकार सुंदर दृष्टि से देखते देखते आगे बढ़ती गई, जाकर देवताओं का पंक्ति जो दूर बैठे हुए थे देवताओं के पास जाकर पहुंच गए. तो जाकर क्या किए, ये कहते हैं दैत्यान गृहीत्वा कलशो वंचयन उपसंचरे ही दूरस्थान पायमास जरा मृत्यु हराम सुधाम. वो जो सुधा कलश हाथ में ली हुई थी तो उस सुधा का विशेष यह है, विशेषत्व तो यह है कि वो जरा जरा यानी वृद्धावस्था और मृत्यु मौत और हाँ ये दोनों को जरा मृत्यु हराम सुधा इस प्रकार जो वृद्धावस्था को न आने देता है और मृत्यु को भी दूर धकेल देता है, इस प्रकार ये अमृत को देवताओं को पिला दी, देवताओं को पिला दी. तो देखिए इतना यहां पर ये विषय वस्तु आज तक है, आगे क्या होगा फिर देखेंगे. तो मन में हमारे ये संशय उत्पन्न होता है, देवता असुर उभय ही समुद्र मंथन के समान रूप से उन्होंने प्रयास की है और उभय को समान भाग से अमृत मिलना चाहिए, लेकिन पहला गलती तो असुर ने की क्योंकि धनंतरी आते ही उनका हाथ से उन्होंने अमृत कलश को छीन लिए, पहला गलती उन्होंने की. और देवता ये क्या कर सकते हैं, उनका साथ लड़ाई नहीं कर सकते, वो बलवान है उनको मार डालेंगे. ऐसे ही कई बार हो चुके हैं, देवता स्वर्ग तक आक्रमण करके उनसे स्वर्ग से उनको वितारित कर देते हैं, कहीं कहीं जीवन रक्षा के लिए कहीं चिप बैठते हैं. ऐसे ही तो डर के मारे उन्होंने भगवान विष्णु के शरण में चले गए. पर भगवान जैसे असुर ने किया गलती, भगवान में भी ऐसे ही ये सामान्य रूप से उनको समान ये समाधान करने आई तो तो उनको समान रूप से असुर और देवता दोनों को समान रूप से बांटना चाहिए, लेकिन देवताओं को उन्होंने अमृत पिला दी और असुरों से असुरों को उनसे अमृत से वंचित कर दिए। क्यों? भगवान कहते हैं समहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय, तो मैं सबके लिए समान हूं, मेरे कोई द्वेष करने वाला नहीं है कि कोई मित्र भी नहीं है। लेकिन उसी का नीचे पंक्ति में दूसरे लाइन में वो आता है ये भजन्ति तु माम भक्त्या मैते तेषु चापि हम। ये जो तू शब्द है ये बड़ा अर्थपूर्ण है। तू एक तू शब्द संस्कृत में किंतु 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 शब्द इतर व्यवच्छेद अर्थ है, अन्य से पृथक कराने के लिए तू शब्द कहा जाता है। सभी के लिए तो भगवान समान है क्योंकि अपने संतान है, असुर भी उन्हीं के है, देवता भी उन्हीं के है, सृष्टि उन्हीं की है, तो समान रूप होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि किंतु तू जो मुझे भजन करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, मैं उनको अधिक प्रिय हूं, मैते ते सुचाप्य हूं, वो मुझ में निवास करते हैं और मैं भी उनमें निवास करता हूं। तो इतने में ही तो फिर क्या हुआ, देवता तो उन्हीं के संतान है, असुर भी उन्हीं के संतान है। ये कहते हैं कि और पद्म पुराण में वर्णन है तो देवताओं का परिभाषा क्या है, विष्णु भक्त भवेत दैवम असुर तद विपर्यय। जो विष्णु के भक्त होते हैं, भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं, उन्हीं के ही भजन करते हैं, उन्हीं के ही आदर्श से अनुप्राणित है, वो देवता कहलाते हैं। और जो उनसे अलग है, पृथक है, जो भगवान विष्णु के शरण में नहीं जाते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति शरण में जाता है जो अपने को कमजोर समझता है और असमर्थ समझता है, तो किसी के शरण में वही व्यक्ति जाता है। लेकिन असुरों ने अपने को बहुत बलशाली अपने मानते हैं, तो यहीं पे भेद हो जाता है, वो किसी के शरण में नहीं जाता है और अपना तपस्या अपना बल के बलभूत पर उन्होंने अड़े रहते हैं कि हम जो करना है अपना बाहुबल से हम कर दिखाएंगे। तो इसलिए भगवान ने सोचा तो ये देवताओं को अगर अमृत से वंचित हो जाए, कर दिया जाए और असुरों को अमृत पिला जाए, तो ये फिर ऐसे ही तो बिना अमृत पिए हुए इतना उपद्रव कर रहे हैं, फिर अमृत पान करने के पश्चात और क्या कर सकें। तो इस प्रकार ये करके उनको छल करना चाहे, तो समान भगवान का यही नियम है, यही नियम है। जो जब उन्होंने सृष्टि रचना की, सृष्टि के साथ एक आचार संहिता उनके साथ समाज को संसार को दिया और मानव समाज को उन्होंने दिया, लेकिन उस आचार संहिता का पूरी आचार संहिता का उल्लंघन असुरों के पास है। कोई एक भी भगवान का नियम को पालन नहीं करते हैं, और जो देवता लोग होते हैं तो पूरा को पूरा नियमित रूप से, जैसे हम देखते हैं कि जो भगवान का मंत्रिमंडल में जो सब डिपार्टमेंटल हेड्स है, जैसे सूर्य चंद्र इंद्र वरुण कुबेर, ये सब कैसे अपना अपना ड्यूटी में कितना पंक्चुअल, एक सेकंड भी उन्होंने विलंब नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं अगर हम विलंब करें तो संसार का हल क्या होगा। तो इसलिए अपना अपना कर्तव्य को पूरे भगवान का जैसे ही निर्देश है तो अनुरूप ही पालन करते हैं, तो इसलिए वो भगवान का प्रिय है। और देवता ये सब अपना तपस्या के बल पर, और जो तात्कालिक जो वर प्रदान प्राप्त करते हैं उससे उनको बहुत अहंकार एवं घमंड होता है। और सभी हम जानते हैं ये संसार में सभी दुख कष्ट का कारण ही मनुष्य का अहंकार है। तो देवताओं का ये जो सरल और विनम्र भाव है और देवता असुरों का जो ये सब घमंड भाव है तो उससे उनका पतन का कारण बनता है। तो इसलिए भगवान ने जब भगवत गीता कही तो उसमें एक श्लोक भगवान ने कहा कि यतुदग्रे विषमिव परिणामे अमृतपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो वही बात भगवान ने उसी को ही यहां पर कर दिखाया। पहले जब उन्होंने देवता असुरों के बीच में जब बात हुई और निर्णय लिया गया तो मंद्राचल को मंथन दंड बनाएंगे, वासु को रस्सी बनाएंगे और एक तरफ असुर और एक तरफ देवता, उनको मंथन करेंगे और जो भी निकलेंगे समान समान रूप से ये करेंगे। पर सर्वप्रथम जो हलाहल विष निकला तो सभी लोग त्रस्त हो गए, देवता असुर भी भयभीत हो गए। अरे अमृत पाने के लिए हम लोग को समुद्र मंथन किए पर निकला जहर। तो इसलिए उन्होंने बड़े चिंता में पड़ गए उभय। पर उस समय जब भगवान शंकर देखा ये समाज, मनुष्य समाज इस प्रकार कष्ट में है, तो उन्होंने पार्वती सती से परमिशन लेकर, आज्ञा लेकर उन्होंने उस जो हलाहल विषय है तो उनको पी गए। तो इसलिए भगवान जो जगत का कल्याण करने वाला तो चाहे जहर पिए तो उनको कुछ नहीं होने वाला। भगवान शंकर का, शिव का स्वरूप ऐसे ही है, सभी का कल्याण करने वाला जो व्यक्ति है उसका कभी अकल्याण नहीं होता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कहते हैं जो कल्याण करने वाला उसको कभी दुर्गति नहीं होती है। तो भगवान शंकर ने वो झर्त पी लिए और उनका गला में जाकर वहीं रुक गए और उन्होंने नीलकंठ कहलाते और वो जहर उनका आभूषण बन गया और संसार में उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। और उससे सभी मनुष्य समाज, प्राणी समाज ये सब स्वस्थ हो गए। पर जब अमृत पान विष पान कर रहे थे, कुछ छींटा इधर उधर पड़ गए थे, तो जिन्होंने जैसे सर्प है, चींटी है, बिच्छू है, जो लोग उनके आसपास घूम रहे थे तो वो उनको खा लिया। तो इसलिए उनमें वो जहर है। तो इस प्रकार भगवान ने असुरों को और देवताओं को ये समुद्र मंथन करने के बाद जो मिला है तो उसका भाग देना चाहिए, तो इसीलिए नहीं दिया, भगवान वंचना किया। तो कहते हैं तो मैं समहम सर्वभूतेषु, लेकिन असुरों का विपक्ष में अर्थात देवताओं का सपक्ष में उन्होंने काम किया। क्यों किया? भगवान स्वयं इसी अध्याय का अंतिम दो श्लोक में भगवान कहेंगे, उपसंहार में वो कहेंगे। कहते हैं एवं सुरासुरगणः समदेशकाल हेत्वर्थ कर्म मतयो अपि फले विकल्पः तत्रामृतं सुरगणः फलमञ्जसापुर यत् पाद पंकजरजः श्रयणात् न दैत्यः। क्यों नहीं किया तो उसका जवाब दे रहे हैं, मैं इसलिए असुरों को ये अमृत पान से वंचित किया क्योंकि यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश काल एक ही देश में समुद्र में और एक ही काल में एक ही समय में और जो भी कारण उनके लिए है तो कारण भी एक ही है और उद्देश्य भी एक ही है उभय का, क्योंकि जब असुर एवं देवता बैठकर उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग से उभय सम्मत एक पारित किया गया कि समुद्र मंथन करेंगे और जो भी निकलेगा समान समान रूप से बंटवारा होंगे। तो ये कहते हैं उद्देश्य दोनों का एक है, कर्म उभय समान भी किए हैं तथा अभिलाषा जो आशा थी वो समान भी है, एक जैसे थे किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का। क्यों? क्योंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमल की धूलि के शरण में रहते हैं। देवता हमेशा जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ मतलब यही असुर ने ही उनको तंग कर रखे हैं, क्योंकि उनका शौर्य वीर और जो भी अच्छे ढंग से वो रहते हैं स्वर्ग में असुरों को पसंद नहीं होता है, उनको बड़ा जलन होता है, ये हमारे भाई है ये इतना ऐश्वर्य भोग करेंगे हमको खाने के लिए भी नहीं मिलता है, तो इसलिए उन्होंने उनका ऊपर टूट पड़ते हैं। और कभी अपना बल बुद्धि पर इतने अड़े हुए हैं तो भगवान का शरण में जाने के लिए कभी नहीं चाहते हैं, द्वेष करते भगवान से, क्योंकि वो अपना सपत क्या विमाता जो दिति अदिति के पुत्र है तो इसलिए उनसे ये जलन होता है। तो इसलिए कहते हैं चूंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमल की धूलि के शरण में रहते हैं, अतएव वे बड़ी आसानी से अमृत पी सकें और उसका फल भी पा सकें, किंतु श्री भगवान के चरण कमल का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मनवांछित फल प्राप्त करने से असमर्थ रहे। यत पाद पंकज रजह आश्रयणात् न दैत्याः, जिनके पाद पंकज आश्रय को ग्रहण नहीं किया दैत्यों ने, इसलिए भगवान जब भी ये सृष्टि में उन्होंने बताए कि मैं आप लोगों के लिए सब कुछ प्रदान करता हूँ, लेकिन आप लोग अगर अपना इंद्रिय शरीर मन बुद्धि बल प्राण के द्वारा अपने शरीर संबंधी एवं इंद्रियों को भोग करने के लालसा से अगर जो भी कर्म करेंगे वो कर्म का फल में भेद होगा। क्या भेद होगा? ना उससे आपका अहित ही होगा, हानि ही होगी। संसार में हम जो भी ये करते हैं, जो भगवान का आश्रय में नहीं है, जो भगवान को अर्पित ईश्वर अर्पण बुद्धि से वंचित होकर अपने इंद्रियों को भोग देने के लिए जितने भी कर्म करते हैं, उसका फल स्वरूप हमको यहाँ इसी संसार में सभी को कष्ट भोगना पड़ता है। और जो भगवान ने बताया कि मयार्पित है ना, ईश्वर अर्पण बुद्धिया जो भी कर्म करेंगे, जो भी फल भोगेंगे, यत करोसी यदश्नासी यद जुहसी ददासी, यत जब मुझे अर्पण करेंगे तो वो विशुद्ध हो जाएगा और वही निरोग और स्वस्थ रहेगा, अन्यथा उनको संसार में कष्ट भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए असुरों का मनवांछा पूर्ण नहीं करने दिया भगवान ने, क्योंकि उनका शरण में नहीं आए। उन्होंने जो नियम बनाए वो नियम को असुर ने शुरू से ही उल्लंघन किया है, तो फल स्वरूप उनको अमृत से वंचित होना पड़ा। तो इसलिए भगवान ये चाहते हैं कि सभी जो भी संसार में जो भी वस्तु है अपना अपना पद के अनुसार अपना अपना स्थिति के अनुसार, जैसे कि मनुष्य है, मनुष्यों के लिए भगवान ने जो कुछ बनाया है वो मनुष्य का ही है, और जो भी मनुष्य इतर जितने भी प्राणी है सभी के लिए अलग अलग है। जैसे व्याघ्र सिंह है उनके लिए ऐसे ही जंतु जानवर बनाए हैं तो उनको भी वो खाद्य रूप में ग्रहण करेंगे। और उनसे जैसे 84 लक्ष प्रकार के योनि होते हैं तो सभी योनियों के लिए अलग अलग खान पान का व्यवस्था भगवान कर रखे हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसे ही के प्राणी है, अपना भाग तो खाता है, अपने के लिए बनाए हुए चीज को तो खाता है लेकिन दूसरे के आहार को भी वो खा लेता है। तो इसीलिए भगवान का नियम जो है उनको जो उल्लंघन करते हैं तो उनको इस प्रकार दंड मिल रहा है और दंड स्वरूप वो संसार में बहुत कष्ट। जैसे हम लोग तो कभी कभी किस समय अगर थोड़ा सा दुख का लाघव होता है हम इतना प्रसन्न हो जाते हैं मानो आपको अमृत मिल गया, अमृत मिल गया। लेकिन नहीं, ये भगवान ने जब सृष्टि बनाए उन्होंने उसका ऊपर लेबल चिपका दिए दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखा घर है और क्षणभंगुर है, ये विनाशी है, ये चिरस्थायी नहीं है और यहां लेस मात्र सुख नहीं है, दुखालयम दुख के घर है। लेकिन सभी हम दुख भोग कर रहे हैं पर कभी किसी बार अगर हमारे कुछ शुभ कर्म के कारण जरा सा हमारा दुख का लाघव हमको अनुभव होता है हम कहते हैं हम सुखी है, वास्तव में सुखी नहीं है, वो दुख का लाघव है। और जिसके कारण आप सुख अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि हम संसार में सुखी है, वही सुख जो तात्कालिक सुख देने वाला ये दुख में अवसान हो जाता है। वही क्योंकि क्षणस्थायी है वो तो चिरस्थायी नहीं, आपके पास हमेशा रहेगा, तो वही वस्तु जो आपको अभी सुख देने वाला उसका जो विच्छेद होगा वियोग होगा वही आपका दुख के कारण बनेगा, वो तात्कालिक है, ऐसे ही वस्तुओं का स्वभाव है। तो इसलिए ये संसार में जो भी वस्तु है मनुष्य के लिए बना है तो फिर मन में प्रश्न होता है तो जब ऐसे ही सभी दुखदायी है, सब दुख में ही अवसान होता है तो फिर भगवान ने ये संसार को बनाया क्यों? तो बनाकर तो बोलते हैं ना, बोल रहे हैं कि आप इनको उपभोग करो। लेकिन ईश्वर अर्पण बुद्धिया ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। कहते हैं अगर भोग करना चाहते हो तो त्याग बुद्धि से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से। क्यों? ना ईशावास्यम इदम सर्वम, ये समस्त जगत ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। अंतत गत्वा अगर गहराई में जाएंगे ईश्वर के अतिरिक्त और संसार में कोई नहीं है, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ ही भगवान ही है, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, लेकिन असुर लोग ठीक उसका विपरीत है, वो तो कहते हैं अयम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्य पुनर्धनम, ऐसे आज तो इतना ही है और भी ये करेंगे और भी इकट्ठा करेंगे तो ठीक विपरीत है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, त्याग ही त्याग त्याग ही त्याग नहीं अमृत तुम मानसो, त्याग से ही अमृत को प्राप्त होता है, न से न कि भोग से। भोग से शरीर क्षीण होता है, नष्ट होता है। तो असुरों का यही भाव है कि भोग करना प्रवृत्ति है, पहले कठोर तपस्या करेंगे, कठोर तपस्या करेंगे। लेकिन भगवान तो कहते हैं तपस्या करो, यतोदग्रे विषमिव, पहले पहले कष्ट उठाओ बाद में आनंद लूटो, भगवान कहते हैं। लेकिन इतने नहीं, और उन्होंने भी बता दिया किस प्रकार आपको तपस्या करना, कठोर इंद्रियों को दमन करके परस्य उत्साधनार्थम, दूसरे को सताने के लिए इस उद्देश्य से करोगे तो आपको ही नष्ट होना ही पड़ेगा। दूसरे को नष्ट करने के इच्छा से जो तपस्या होती है तो उसके द्वारा अपना ही हानि होता है। तो इसलिए भगवान ये सब नियम कानून रखे है, ये मोहिनी मूर्ति धारण करने का यही उद्देश्य है, असुरों को छलना। वास्तव में छलना नहीं तो उन्होंने शुरू से ही अगर समान रूप से बंटवारा होता तो कलह नहीं होता, तो धन्वंतरी से अमृत कलश असुरों ने नहीं छीनते तो फिर भगवान मोहिनी रूप धारण ना करते, समान समान बंटवारा होता है, क्योंकि पहले से ही जो नियम रखा गया है जो भी निकलेंगे तो उभय हम समान रूप से प्रयास करें, समान भी फल प्राप्त होना चाहिए। तो उन्होंने ही शुरुआत से ही असुरों का यही उनका मूल उद्देश्य यही है, दूसरे को वंचना ठगना करना, ठग करना, यही असुरों का। इसलिए भगवान ने तो उनको इस प्रकार शास्ति देने के लिए ये मोहिनी रूप धारण करके ही गए, और उसमें बड़े सुंदर आगे और जो रह गए दो चार सात श्लोक है बहुत सुंदर सुंदर है। ये देवता असुरों ने इतना चालाक, इतने चालाक, उनमें से एक है राहु, बड़ा ये है, और उन्होंने देखा कि ये मोहिनी मूर्ति जो है जो हमारे पास ये आई है तो हमको भुलाने के लिए इनका कुछ उद्देश्य है, ये लगता है ये असुरों देवताओं को ये अपना बस में अपना करके हमको छलने के लिए आए है। तो उन्होंने तुरंत देवताओं का वेशभूषा, असुर है तो किसी भी रूप में धारण कर सकते हैं, तो देवता रूप धारण करके सूर्य चंद्र का बीच में जाकर बैठ गया, और भगवान परसते परसते अमृत जाकर वहां पहुंच गए। तो उनका पत्र में जब डालते ही उन्होंने तुरंत खा लिया, और खाते ही तो तुरंत दोनों सूर्य चंद्र को कंप्लेन कर दिए कि ये असुर, ये राहु है, ये असुर है। तो तुरंत भगवान ने सुदर्शन से उनका गला काट दिया। तो यहां तक आया था, नीचे नहीं आया था, इसलिए धड़ का नीचे गिर गया और राहु सर के रूप में राहु रह गया, वो ग्रह रूप में अभी पूजा पाता है। और उन्होंने कंप्लेन की थी, ये दोनों सूर्य चंद्र का बीच में बैठा था ना, ये असुर है, इसको मत दीजिए, तो देते ही उनको देते ही ये इस प्रकार ये कर दिए, भगवान ने काट दिए। और इसीलिए उनका बदला लेने के लिए अमावस्या और पूर्णमासी में सूर्य चंद्र को ग्रहण लगता है, वही राहु ग्रास करता है, बदला लेता है ऐसे। तो ये बात तो भगवान को तो पता होना चाहिए ना, तो ये असुर की नहीं, जो भगवान है तो सब जानते हैं, तो फिर ऐसे क्यों किया, टाइम हो गया, तो ये बात बताएंगे आगे के श्लोक में। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।